का था, रूप वही, रूप नया।
गाथा में आज आप सुन रहे हैं डॉक्टर रश्मि की लिखी कहानी स्टेटमेंट। कजरी अपनी पोती के करीब आकर बैठ गई, फिर उसके हाथ की बनी एक टोकरी को उठाया और उलट पलट करके देखने लगी। प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती हुई बोली, घड़ी पुत्री टोकरी बनावे है तू, थारे हाथों में तो हुनर है छोरी। लेकिन फुलवा ने अपनी दादी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। पहले की तरह ही तीलियों में अपनी उंगलियां उलझाए वो उन्हें आपस में गूंथती रही। 10 साल की बच्ची फुलवा रंग बिरंगी तीलियों से अपनी सुंदर टोकरियां बनाती थी, उतनी ही सुंदर और रंगीन उसकी हंसी भी थी। लेकिन इन दिनों उसकी हंसी इन तीलियों से बिखर कर रह गई थी। अब ना तो वो हंसती थी और ना ही किसी की बात का कोई जवाब देती थी। बस इन तीलियों में ही अपना सारा का सारा दर्द बांटती रहती थी, पिरोती रहती थी। अब तो ये हाल हो गया था कि तीलियां बढ़ते बढ़ते अगर उसकी उंगली के पोर छिल भी जाएं, तो उसे दर्द का एहसास नहीं होता था, क्योंकि ये मासूम बच्ची अपनी कच्ची उम्र में ही तन और मन के रेशे रेशे की छिलन और दर्द को झेल चुकी थी। कजरी वहीं बरामदे के बीचों बीच पड़ी खटिया पर जाकर बैठ गई। वो बुझे मन से अपनी पोती को निहारती रही और उसी के बारे में सोचती रही। मारी फुलवा, इसके चेहरे पर हर वक्त एक चमक रहती थी, इब कैसी मुरझा गई है चोरी। कल कल बहते पानी सी सीधी सरल मेरी पोती बर्फ जैसी सर्द होकर सख्त होकर रह गई है। कजरी ने एक बार फिर हिम्मत बटोरी, अपने घुटनों पर हाथ रखते हुए उठी और फुलवा के पास बैठते हुए प्यार से बोली, चल चोरी मंदिर चल मारे साथ, थारा जी बहल जावेगा। मन्ने नहीं जाना, फुलवा ने मिमियाते हुए उत्तर दिया। कजरी जानती थी कि उसकी पोती जिस हादसे से गुजरी है उसके जख्म इतनी आसानी से नहीं भर पाएंगे। बहुत बरस पहले वो खुद भी तो इस जख्म को अपने तन मन पर झेल चुकी थी, इसीलिए अपनी पोती के दर्द को बखूबी समझ सकती थी। वो तो फिर भी 16-17 बरस की थी, लेकिन उसकी फुलवा तो अभी 10 बरस की ही है और इतना बड़ा वज्र सह गई। कजरी को अपना लड़कपन याद हुआ है, उसे बचपन में ही ब्याह दिया गया था, अभी वो ठीक से बोलना तक नहीं सीखी थी। ऐसे में उस रिश्ते को क्या नाम देती जिसमें वो जबरन बांध दी गई थी। मायके वालों ने उसे ब्याह तो दिया लेकिन गौना नहीं किया था। शायद उन्हें भी उसकी कच्ची उम्र का एहसास था। फिर जब वो 14 बरस की हुई तब गौना होकर अपने सासरे लौटी। उस वक्त वो ये कहां जानती थी कि जिस गांव की बहू बनकर आई है एक दिन उसी गांव के मुखिया की बदनीयति का शिकार बन जाएगी। उसकी मुंह दिखाई के दिन की बात है, गांव में बड़ा बुलावा था, पूरे गांव की लुगाइयां उसके आंगन में जुड़ आई थी, सबकी सब उसके रूप की तारीफ करती नहीं थक रही थी और उसकी सास भी उस पर वारी वारी जा रही थी। सास ने सबके सामने उससे कहा था, बीनड़ी पूरे गांव ने अपना ही घर मानी, जो यहां सब तेरे अपने ही रिश्तेदार नातेदार हैं, कोई तेरी माँ समान है तो कोई तेरी भाभी समान, तो कोई तेरी बहन सरीखी है तो कोई तेरी सहेली सी। उसने भी हामी में अपना सिर हिला दिया था और सच भी तो था, ऐसा ही हुआ भी। उसे पूरे गांव का अपनापन मिला, खूब प्यार मिला, इतना प्यार कि अपने पीहर की भी सुध ना रही थी। जो रिश्ते वहां पीहर में बिछुड़ गए थे वो सब यहां सासरे में मिल गए। इन्हीं सब अच्छे लोगों के बीच एक इंसान, उसकी नियत ना जाने कब बदल गई कि राम जाने वो पहले से ही ऐसा ही था, बदनियत पता ही ना चला। वो इंसान इसी गांव का मुखिया था। कजरी उसके आगे लाग गिड़गिड़ाई, हाथ जोड़ के मिन्नतें की, अपने पेट से होने की दुहाई दी, लानतें भी दी, तड़पी मचली और फिर सिसकती ही रह गई। अंततः कजरी अपने बलात्कार के दर्द को जिस्म में लिए आत्मा के भीतर दबा गई। मुखिया की धमकी और लोकलाज के भय से किसी के भी आगे उसने अपना मुंह नहीं खोला और साल दर साल बीतते चले गए। वो निगोड़ा मुखिया भी दूसरे ही बरस बीमारी के चलते राम को प्यारा हो गया। कजरी बड़े जतन से उस काली याद को किसी अंधेरी खाई में दफनाई और अपने आगे की जिंदगी सवारने लग गई। धीरे धीरे समय बीता, सात बच्चे जने और फिर अपने बच्चों में रम गई। अपनी घर गृहस्थी और अपने बच्चों को ही उसने अपनी जिंदगी बना लिया। माँ बनी, फिर दादी बनी। अब जब वही सब उसकी पोती के साथ दोहराया गया तो सालों बाद दर्द की सारी परतें फिर उखड़ गईं, जख्म फिर से हरा हरा हो उठा। उसी मुखिया के सबसे छोटे और बिगड़ैल कपूत ने उसकी फूल सी पोती को मसल डाला था। भी तो ये बिचारी इन सब का मतलब भी ना जाने थी। क्या होवे है आदमी औरत के रिश्ते, कैसे होवे हैं तन की भूख, कुछ भी तो ना जाने थी। उम्र ही क्या है अभी इसकी, 10 बरस की ही तो है मारी छोरी। 10 बरस में वो क्या जानती तन के खिलवाड़, जिस्म की नोच खसोट। कजरी का जी कड़वा होठा। सामने बैठी उसकी पोती फुलवा अभी भी उसी तरह सीकों में नजरें गड़ाए डलिया बिनने में लगी हुई थी। जब फुलवा छोटी सी थी तब उसके माँ बापू अक्सर उसे मारते थे। उस बेचारी की कोई गलती हो चाहे ना हो, लेकिन माँ बापू चलते फिरते अपना हाथ चला देते। ना माँ कम मारती ना बापू, छुटका भाई कुछ तोड़ दे तो वो तो पिटता ही, लेकिन संग संग फुलवा भी पिट जाती। वो काहे पिट जाती थी ये बात वो कभी नहीं समझ पाई। वो तो बस इतना ही जानती थी कि उसके माँ बापू अपने बच्चों को पीटते हैं, बस वजह चाहे जो भी हो। गांव में उसकी जितनी भी सहेलियां थीं, कभी ना कभी सभी की अपने अपने घरों में पिटाई होती ही रहती थी। इसीलिए जब फुलवा किसी बात पर अपने बाबू से पिट जाती तो बुरा नहीं मानती थी। उसकी माँ का गुस्सा भी बड़ा खतरनाक था। गुस्सा आ जाने पर झाड़ू चिमटा जो हाथ लगता फेंक कर दे मारती उसे। एक बड़ी अम्मा कजरी ही थी जो बस चिल्ला कर रह जाती, कभी मारती पीटती नहीं थी, बल्कि कोई उसे मारे तो बीच बचाव भी करती थी और फिर उन्हें ही चोट क्यों ना लग जाए। यहां तक कि उसका छुटका भाई भी उसके बाल पकड़कर खींचता रहता था, बहुत तेज गुस्सा आ जाने पर भी मार देता था। इसीलिए बचपन से ही मार पिटाई खाने की खूब आदत थी फुलवा को। उसने देखा था जब उसके बापू को छुटके पर खूब गुस्सा आता तो वो उसकी बूशर्ट उतार कर उसकी नंगी पीठ पर मारता था। इससे छुटके को खूब जोर से लगती सीधे चमड़ी पर। बापू छुटके को पीटता भी जाता और बड़बड़ाता भी जाता, ससुरे की पीठ उघाड़ के मारूं तभी अकल आवेगी। जब नंगी पीठ पर लागेगी ना तभी दिमाग चालेगा ससुरे का। लेकिन फुलवा एक बात पर बड़ी हैरान होती कि उसका बापू उसकी माँ को काहे पीटता है और वो भी आधी रात को गुत्तम गुत्ता होकर पीटता है। ना चीखता है ना चिल्लाता है और ना ही चाटे लगाता है, लेकिन चढ़ बैठता है उस पर और माँ भी बेचारी सकती ही रह जाती। उसकी माँ तो निरीह गाय है, पूरे दिन चुपचाप घर भर के काम ही करती रहती है, किसी के भी साथ कोई उल्टे बोल तक नहीं बोलती, ना लड़ती है ना झगड़ती है। फिर काहे उसका बापू हर दूसरे तीसरे दिन आधी रात को उसकी माँ का बदन उघाड़ कर दबोचता है, कचोटता है, काहे बेचारी पर चढ़ बैठता है और वो सिसकियां लेकर रह जाती है। बस यही बात हुलवा की समझ में नहीं आती थी। हुलवा की माँ भी सीकों की बड़ी सुंदर टोकरियां बनाती थी। पहले वो सीकों को अलग अलग रंगों में रंगती और फिर उन्हें आपस में बट बट कर टोकरियां बनाती। उसकी बनाई टोकरियां गांव के साथ लगी मंडी में खूब बिकती थी। हुलवा भी माँ की बनाई टोकरियां मंडी में ले जाकर बेच आती थी। लेकिन जैसे जैसे हुलवा बड़ी होती गई, वो भी अपनी माँ की ही तरह रंगीन टोकरियां बनाने लगी थी। एक दिन हुलवा टोकरियां सर पर धरकर पगडंडियों और खेतों से होती हुई मंडी की तरफ चली जा रही। तभी रास्ते में उसे मुखिया का पोता मिल गया। उसने रास्ता रोकते हुए पूछा, हुलवा कहाँ ले जा रही है ये सुंदर सुंदर टोकरियां? एक आध मारे घर भी पहुंचा दे, अम्मा खुश हो जाएगी। भाई सा, अपने पसंद के रंग और दाम तय करो, मैं कल ही बिन के हवेली पहुंचा दूंगी। जे हुई ना बात, सुन, दाम जो तू चाहे लगा ले, लेकिन तू कल 3 रंग बिरंगी टोकरी बिन के हवेली पहुंचा दे और उनके दाम इसी टेम यहीं पे आके मारे हाथों से ले ले। जी भाई साहब। सिर हिलाकर हुलवा मंडी की ओर चल दी। वो किसी से भी ज्यादा बोलती चलती नहीं थी, स्वभाव से वो अपनी माँ पर ही गई थी। काम से काम बस, ना ज्यादा किसी से बोलना और ना ही बिना काम कहीं घूमना फिरना। हुलवा उस दिन शाम ढले बाजार से लौटी, घर पहुंची, चटपट रंग बिरंगी टोकरियां बनने बैठ गई। घर के बाकी लोग भी ये जानकर बहुत खुश हुए कि हवेली में टोकरियां जाएंगी तो दाम भी अच्छे मिलेंगे। हुलवा अगले दिन भी मंडी नहीं गई, दिन भर टोकरियां ही बिनती रही। मासूम लड़की सांझ तक 3 टोकरियां बनाकर हवेली पहुंचाने चल दी। हुकुम साबी हुलवा की बनाई उन टोकरियों को देखकर बड़ी खुश हुई। उन्होंने उसे उन 3 टोकरियों के दाम चुका दिए। हुलवा पैसे लेकर अपने घर वापस चल दी। जब वो लौट रही थी तब अचानक गन्ने के घने खेतों के बीच से मुखिया का पोता प्रकट हो गया। उसने हुलवा को अपनी ओर घसीटते हुए पूछा, क्यों री, तूने अम्मा से पैसे क्यों लिए? मैंने कहा था ना कि मैं दूंगा, हुकुम ने दे दिए तो मैं काय करती भाई सा, उसने कसमसाते हुए खुद को उसके चंगुल से छुड़ाते हुए जवाब दिया। लेकिन इब माने भी देने का मन है, हुलवा मैं काय करूं, इब मारे से भी ले ले। हुलवा हाथ जोड़कर माफी मांगती रही, रोती रही, छटपटाती रही, लेकिन उसके तन से एक एक कपड़ा उतरता गया। नादान बच्ची अब तक यही सोचती रही कि जैसे मेरा बापू छुटके को और माँ को कपड़े उतार कर पीटता है, वैसे ही छोटे मालिक भी पीटेंगे, उसे उसकी गलती की सजा देंगे। और वो मासूम लड़की कुचली जाती रही, मसली जाती रही। इस वक्त जो हुलवा के साथ हो रहा था वो तो उसका मतलब तक नहीं समझती थी। बस वो इतना ही जानती थी कि इससे पहले कभी किसी ने उसे इस तरह से नहीं पीटा था, न माँ ने न बापू ने। उसकी जांघों के बीच से खून रिसने लगा, तन का एक एक हिस्सा दर्द से बेहाल हो उठा। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे मारा जा रहा था या फिर रौंदा जा रहा था। वो गरीब इस उम्र में बलात्कार के मायने ही कहां जानती थी। रात होने को आई थी, आसमान में धुंधलका छाने लग गया था। फुलवा के मन के भीतर भी गहरी दुविधा मची हुई थी। वो मासूम अब तक इसी उहापोह में थी कि छोटे मालिक ने मेरा बदन उघाड़ कर आखिर ये सब क्या किया? क्या उन्हें मेरी टोकरियों के रंग पसंद नहीं आए, या मैंने हुकुम से पैसे लेकर इतनी बड़ी गलती कर दी कि वह नाराज हो गए? बेचारी बच्ची जैसे तैसे उठी, हिम्मत बटोरी, खुद को समेटा और कराहती हुई छोटे छोटे कदम बढ़ाकर घर की ओर चल दी। माँ की नजर ज्यों ही अपनी बच्ची पर पड़ी, वो उसकी ओर दौड़ पड़ी और कोक जाई को आंचल में छुपाकर कोठरी के भीतर खींच ले गई। माँ रोती जाती थी और फुलवा को बाहों में भींचती जाती थी। एक ओर फुलवा का जिस्म पोर पोर दुख रहा था, तो दूसरी ओर माँ की आत्मा अपनी बच्ची को इस हाल में देखकर बिलख रही थी। बापू, बड़ी अम्मा, छुटका, सब उसकी जांघों से बहता खून देख देख कर रो रहे थे। उसकी बाजुओं और चेहरे पर चोट के निशान देख रहे थे। बड़ी माँ ने बस इतना ही पूछा, छोरी, थारा जे हाल किस निपूते ने किया? छोटे मालिक, फुलवा के मुंह से इतना सुनकर उसका बापू जहर बुझे सांप सा बिलबिला उठा। फिर कई दिन तक माँ फुलवा की देखभाल करती रही, कभी सिकाई करती, कभी मरहम लगाती, किसी ने भी उसे घर से बाहर नहीं जाने दिया। एक दिन फुलवा के बापू ने आकर कहा, फुलवा चल, मारे साथ चल, छोरे की शिकायत मैंने सरपंच जी से की थी, सरपंच जी पूरी बात थारे मुंह से सुनना चाहते हैं, जो भी पूछे सच्ची सच्ची कह देना, शर्माना मत छोरी और ना ही घबराना, मैं तो उस दरिंदे को कोर्ट कचहरी तक खींचूंगा, बड़े होंगे तो अपने घर के, जेल की हवा ना खिला दी तो। फुलवा सिर झुकाए बापू के पीछे पीछे चल दी। सरपंच ने बच्ची के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कमरे के भीतर ले गया। अकेले में बड़े प्यार से उससे हर बात पूछता रहा। फिर बाप बेटी को 2-3 दिन बाद दोबारा आने को कहकर वापस भेज दिया। फुलवा का बापू अपनी बच्ची को हर उस ड्योढ़ी पर ले जाता जहां उसे जरा भी न्याय मिलने की आस बंद थी। दोनों बाप बेटी दर दर भटकते रहे। हर जगह फुलवा का स्टेटमेंट लिया जाता रहा। हर कोई फुलवा के बापू को बाहर बैठने के लिए कहता और फुलवा को भीतर ले जाकर उसका स्टेटमेंट लेता। उसके बापू को पूरा विश्वास था कि उसकी शिकायत का असर होगा और उसकी बेटी को न्याय जरूर मिलेगा। चौथे दिन बाद जब विधायक ने खुद उसे और फुलवा को अपनी कोठी में बुलवाया तो उसे आस बन गई। फुलवा का बापू समझ गया कि ये सब उसकी शिकायत का ही असर है और अब तो जरूर उस छोरे को सजा होकर रहेगी। नेताजी उस छोरे को बख्शेंगे नहीं। वो अपनी बेटी को लेकर विधायक की ड्योढ़ी पर जा पहुंचा। राधे, मैं बच्ची से अकेले में बात करना चाहूं। और वो फुलवा को भीतर ले गई। बड़े प्यार से बच्ची के तन पर हाथ फेर फेर कर पूरी बात पूछता रहा। फुलवा के साथ जो हुआ था वो अब पूरे गांव में किसी से भी छिपा ना था, दबी दबी जबान से ही सही गांव भर में इस बात के चर्चे शुरू हो गए। यूं 2 हफ्ते बीत गए। फुलवा की अम्मा ने उसके बापू को समझाया, बेटी की बात है, जिद मत करो, ऊंची हवेली वालों को कोई भी सजा हुई है जो अब होवेगी, बल्कि हमारी ही इज्जत खाक में मिलती जावेगी, ऊपर वाला सब देखे है, वही न्याय भी करेगा, बिटिया के जखम हम सब मिलकर भर देवेंगे, काहे बार बार सबके सामने अपनी ही इज्जत को उघाड़ते हो, कोई बयान लेवेगा, कोई गवाही तो कोई स्टेटमेंट, अरे गरीब की कौन सुनता है, हमें कब मिला है न्याय जो अब मिलेगा। माँ बोलते बोलते फूट फूट कर रोती। बड़ी अम्मा ने भी माँ की बात को दोहराया, बीनड़ी ठीक ही तो बोले है, तू क्यों छोरी ले लेकर दर दर फिरे है? चुप कर जा बस, अपना अपना काम करो सब कोई, माने ना चाहिए कोई न्याय से आए। 2-4 बरस बाद छोरी ने ब्याह देंगे, अपने घर जाके सुखी रहेगी। छुटके को जहीं पर रहना है, इन्हीं लोगों के बीच अपना काम धंधा करना है। मत कर इनसे बैर, हम गरीब लोग हैं, हमारी इज्जत इन्हीं लोगों के हाथ में है। लेकिन फुलवा का बापू अब पीछे हटने को तैयार ना था, वो न्याय चाहता था। वो उस दरिंदे को जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहता था जिसने उसकी बच्ची की जिंदगी नरक बनाकर राख कर दी थी। मासूम फुलवा कभी अपने बापू, कभी बड़ी अम्मा और कभी माँ की शक्ल देखती और ये सोचती रहती, हो ना हो कुछ तो गलत हुआ है उसके साथ, तभी तो गांव वालों की दया और माँ बापू का दुलार उसके प्रति बढ़ता ही जा रहा। लेकिन दूसरी ओर हर रोज बढ़ता जा रहा था हर ओहदेदार के आगे दिया जाने वाला उसका स्टेटमेंट। वो अपना स्टेटमेंट दे देकर थक चुकी थी। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि इतने सारे लोग अलग अलग और बार बार बुलाकर उसका स्टेटमेंट क्यों ले रहे हैं। क्या एक बार के स्टेटमेंट से काम नहीं चल सकता? ना ही उसकी जांघों के बीच के जख्म भरने का नाम ले रहे थे और ना ही आत्मा के जख्म भर पा रहे थे। वो और उसकी आत्मा दोनों ही अब तो गूंगे हो चुके थे। पहले से ही कम बोलने वाली फुलवा अब और चुप चुप रहने लगी थी। जहां तक होता अपने हाथ या सिर को हिलाकर हां ना में जवाब दे देती और काम चल जाता। कल ही फुलवा अपने जिले के कलेक्टर को अपना स्टेटमेंट देकर आई थी और आज उसके बापू ने कहा कि शहर में किसी वकील से बात हुई है, कल तड़के उसके पास चलना है। इब कहीं नहीं जाना बापू, हमेशा चुप रहने वाली फुलवा सिसक सिसक कर रोने लगी। मारे से अब और स्टेटमेंट नहीं दिया जाता बापू, थक गई दे देकर, मन्ने नहीं देना किसी को भी स्टेटमेंट। बच्ची बिलक बिलक कर रो पड़ी। राधे ने बच्ची को पुचकारा, सुन बिटिया, वकील साहिबा बहुत भली औरत है, वे जरूर हमें न्याय दिलवाएंगे। बस तू इपकी चल मारी छोरी, फिर तन्ने कहीं ना लेकर चालूंगा, थारी सो। आखिरकार फुलवा ने अपने बापू की बात मान ली। अगले ही दिन तड़के दोनों बाप बेटी शहर चल दी, लेकिन फुलवा अभी भी ठीक से चल नहीं पाती थी, उसके जख्म भर ही नहीं पा रहे थे। बस में कई लोग बाप बेटी को घूर घूर कर देख रहे थे। राधे ऐसे ठिठका बैठा था मानो कोई बड़ा गुनाह का गट्ठर सर पर धरे बैठा हो। मुस्कुराते हुए अपने आसपास के लोगों से बोला, मारी छोरी की तबीयत ठीक कोनी, डॉक्टर को दिखाने शहर लेकर जा रहा हूं। राधे और फुलवा तय समय से पहले ही वकील साहिबा के दफ्तर पहुंच गए। मैडम के असिस्टेंट ने उनका नाम रजिस्टर में लिखकर अंदर पहुंचा दिया और उन दोनों से वहीं पड़ी बेंच पर बैठकर इंतजार करने के लिए कहा। बच्ची बहुत घबराई हुई थी, अब तक ना जाने कितनों के आगे अपने जख्म खोलती आई थी। दूसरों से क्या, अब तो खुद से भी डरने लगी थी। बार बार उस मनहूस शाम को याद करके सिहर उठती थी। अब वो कुछ भी याद नहीं करना चाहती थी, नहीं देना चाहती थी अब किसी को भी कोई स्टेटमेंट। वो सोच सोच कर परेशान हो उठी कि उसका बापू उसका दर्द क्यों नहीं समझ पा रहा है। वो यहां से भाग जाना चाहती थी। सोच सोच कर उसका सिर बुरी तरह भन्ना उठा। 10 वर्ष की मासूम फुलवा जो बलात्कार के मायने भी नहीं जानती थी, अब तक ना जाने कितनों को अपना स्टेटमेंट दे चुकी थी। उसने मन ही मन तय किया कि बस आज ये आखिरी बार है, आज के बाद वो कोई गवाही, कोई बयान, कोई स्टेटमेंट नहीं देगी। वकील साहिबा खुद एक औरत है और वे उसका दर्द जरूर समझेंगे। बस वो उन्हें ही आज अपना आखिरी स्टेटमेंट देगी, इसके बाद कभी किसी के पास जाने को राजी ना होगी। कह देगी बापू से कि बस नहीं चाहिए मुझे न्याय, बार बार जख्म हरे करके ही अगर न्याय मिलेगा तो नहीं चाहिए ऐसा न्याय। वो और उसका बापू दोनों ही अपने अपने दर्द के समंदर में डूबे हुए थे। वकील साहिबा के कमरे से उनका चपरासी बाहर आया और उन दोनों को भीतर आने का इशारा किया। दोनों उठ खड़े हुए और वकील साहिबा के सामने पहुंच गए। उनके आगे एक खूब बड़ी सी मेज रखी थी और तीन कुर्सियां। बैठिए आप दोनों, प्लीज आप पानी लेंगे? और उन्होंने अपने चपरासी को तीन गिलास पानी लाने को हुक्म दिया। मैडम जी, हमारी छोरी के साथ बड़ा अन्याय हुआ है, हमें अब आपका ही आसरा है। दर दर की ठोकरें खाने के बाद अब आपके पास तक पहुंचे हैं। हमारी फूल सी छोरी सबको अपना स्टेटमेंट दे देकर पत्थर सी हो चली। हाँ हाँ बिल्कुल राधेलाल जी, आप मुझ पर भरोसा रखें, अब हम उस दरिंदे को सलाखों के पीछे करके ही चैन लेंगे। लेकिन मुझे उसके लिए फुलवा से कुछ बातें पूछनी होंगी, मुझे भी उसका स्टेटमेंट एक बार तो लेना ही होगा। फुलवा सेहर उठी। अब तक वो चुप्पी साधे बापू और वकील साहिबा की बातें सुन रही थी, लेकिन जैसे ही अपने स्टेटमेंट की बात सुनी वो ऊपर से नीचे तक कांप गई। आखिर कितनी बार देना होगा ये स्टेटमेंट? मुझे बच्ची के साथ अकेले में बात करनी है, क्या प्लीज आप बाहर बैठ सकते हैं? राधे अपने दोनों हाथों को जोड़े हुए खड़ा हो गया, फिर उसने अपने बच्ची के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और एक बार आशा भरी निगाहों से वकील साहिबा को देखते हुए बाहर आ गया। वो जानता था कि ऐसी बातें कोई लड़की के पिता के सामने कैसे पूछ सकता है, अकेले में ही पूछेगा। फुलवा के लिए भी ये कोई नई बात नहीं थी, अब तक जितने लोगों ने भी उसका स्टेटमेंट लिया था सभी ने अकेले में ही लिया था। बस वो हैरान तो इस बात से थी कि आखिर वकील साहिबा खुद एक औरत होकर भी उसका स्टेटमेंट कैसे ले सकती है, क्या औरत होते हुए भी उसका दर्द नहीं महसूस कर सकती? कब तक वो सबको बताती रहेगी कि उस शाम क्या हुआ था और कैसे हुआ था? फुलवा डरी सहमी सी अकेली बैठी थी उनके सामने। वकील साहिबा कुर्सी से उठकर फुलवा के नजदीक आई और उसके कंधे पर प्यार से हाथ रखा, फिर उसे कोने में पड़े अपने सोफे पर ले गई, अपने पास बिठाया और कुछ सवाल पूछे। मसलन, जब तुम्हारे साथ यह हादसा हुआ तो तुम कहाँ जा रही थी? उस वक्त कितने बज रहे थे? तुमने कपड़े कैसे पहने थे? तुम्हारे साथ और कोई था कि नहीं? क्या तुम उस लड़के को पहले से जानती थी? क्या कभी उस लड़के से पहले भी अकेले में कहीं मिली थी या कभी कोई झगड़ा वगैरह हुआ था उससे? दोनों घर वालों के आपस में कोई कहा सुनी हुई थी वगैरह वगैरह? हालांकि वे खुद भी जानती थी कि 10 वर्ष की ये बच्ची इस कुकर्म के बारे में इससे पहले जानती भी क्या रही होगी, लेकिन केस फाइल करने के लिए कुछ सवालात तो करने ही थे। वकील साहिबा उठी और अपनी मेज के पास चल दी। उन्होंने फुलवा को अभी कुछ देर और बैठने के लिए कहा। फुलवा, मैं अभी तुम्हारा और स्टेटमेंट लूंगी, जरा वहीं बैठना। और वे अपनी मेज के पास जाकर कुछ लिखने लगी। वापस पलटी तो देखकर सन रह गई। फुलवा अपनी सलवार को नीचे तक सरकाकर सोफे पर लेटी हुई थी। वे सन रह गई और दौड़कर उसके करीब पहुंची। फुलवा, उठकर बैठो, और क्या है ये सब? उन्होंने उससे गुस्से से पूछा। मैडम जी, आपने मेरा स्टेटमेंट तो लिया ही नहीं, बच्ची ने मासूमियत से जवाब दिया। वकील साहिबा वहीं जमीन पर बैठकर उसकी सलवार का नाड़ा जल्दी जल्दी बांधने लगी और ये सोचकर रो पड़ी कि ये मासूम बच्ची तो स्टेटमेंट तक का मतलब नहीं जानती। इस तरह से तो ये अब तक ना जाने कितनों को अपना स्टेटमेंट दे चुकी होगी। गाथा में आज आप सुन रहे थे डॉक्टर रश्मि की लिखी कहानी स्टेटमेंट। गाथा में इसे आपके लिए प्रस्तुत कर रही थी निधि मिश्रा।